Thank you. 3 साल के हैं माता जी और इतने सुंदर और इतने आकर्षित क्यों दिख रहे हैं? आप लोग सब दर्शन ले पा रहे हो? क्या ये सुंदर दिख रहे हैं? तो ये इतना सुंदर और इतने आकर्षित इसलिए नहीं है कि मूर्तिकार ने इन मूर्तियों को अपनी कला से सुंदर बनाया है। ये सुंदर इनके भक्तों की सेवा की वजह से हो रहे हैं। विशेष रूप से ये जो परिवार है, जुगल किशोर देव प्रभु, अंतरंगा शक्ति माता जी, प्रकाश प्रभु, संगीता माता जी और इनके जो हेड हैं बालकृष्ण प्रभु, जिनको हम हेड पुजारी बोलते हैं, तो इस घर में और कृष्णा मधुसूदन और अन्य सारे सदस्य, ये डीटी डिपार्टमेंट है इनका और ये सब पुजारी हैं और इनकी पूजा सेवा के वजह से श्री राधा माधव जी इनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन, महीना प्रति महीना, वर्ष प्रति वर्ष इनकी सुंदरता बढ़ रही है। इस भौतिक संसार में दिन प्रतिदिन सुंदरता घटती रहती है किसी की, परंतु भगवान के संदर्भ में भगवान की सुंदरता और भगवान की जो आकर्षित करने की शक्ति है वो हर क्षण, केवल दिन नहीं, हर क्षण बढ़ती रहती है। और विशेष रूप से जब भगवान के भक्त जब उनकी सेवा में लगते हैं भगवान की, तो उसमें भगवान और सुंदर दिखते हैं। कल्पना कीजिए, भगवान यदि बिना श्रीमती राधा रानी के, बिना ब्रजवासियों के यदि अकेले खड़े रहे, तो भगवान इतने सुंदर नहीं दिखेंगे। इसलिए भगवान की सुंदरता है उनके भक्तों के मध्य। जो गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं इस संदर्भ में, और वह भगवान श्री कृष्ण से बहुत संबंधित है ये उदाहरण। जब कोई व्यक्ति सीटी बजाता है तो हम देखते हैं कि जो सीटी की ध्वनि है वो मधुर होती है। हम लोगों से बहुत हमारी युवावस्था में सीटी बजाए होंगे, बजाए अलग अलग तरीके हैं। कई बार किसी को सिटी मधुर लगती है, किसी और को नहीं लगती। तो ये मेरा उदाहरण नहीं, जीव गोस्वामी का उदाहरण है। तो जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जब सिटी बजती है तो सिटी की ध्वनि मधुर होती है, तो वही सीटी की ध्वनि जब बांसुरी के छिद्रों से बाहर आती है तो वही बड़ी सिटी की ध्वनि बांसुरी के छिद्रों से बाहर आई हुई और ज्यादा मधुर हो जाती है। कि किसी व्यक्ति को अगर हम सिटी बजाने के लिए कहें तो उसमें ज्यादा वो उतार चढ़ाव नहीं कर सकेगा, ज्यादा उसमें से वो राग नहीं उत्पन्न कर पाएगा। परंतु वही सीटी मुख से निकली हुई जो वो बांसुरी की ध्वनि में परिणित होती है, तो बांसुरी वादक उसी सीटी के ध्वनि को अपने रागों में निकाल कर बजा सकता है। तो जी गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस सीटी के समान है, और जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं तो वही सीटी अब बांसुरी के छिद्रों से निकली हुई ऐसा मानना होगा कि तब भगवान की सुंदरता, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, अब भगवान की कोई भी एक लीला लो, उसमें जब तक भक्त भगवान के संपर्क में नहीं आए उन लीलाओं में कोई मधुरता नहीं थी। क्या भगवान की कोई भी ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने अकेले कोई लीला की हो? और कोई नहीं। यहां तक कि भगवान जब बांसुरी भी बजाते हैं तो बांसुरी वो भी भगवान की भक्त है, तो भगवान की बांसुरी की ध्वनि जो है, इसके विषय में हमने चर्चा की है कि वृंदावन में जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो ध्वनि इतनी मधुर होती है कि जो वृंदावन के पत्थर हैं वो पिघल कर बहने लगते हैं। भगवान की बांसुरी की ध्वनि की तरफ वो पत्थर बहने लगते हैं, क्योंकि पत्थरों को लगता है कि अगर हम एक जगह पर रहें तो ध्वनि जहां से आ रही है वो ध्वनि का संग हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए ध्वनि का संग करने के लिए वो पत्थर पिघल कर बहने लगते हैं। जमुना देवी, उनका स्वभाव है बहना, तो जमुना देवी वो बहते बहते सोच रही कि तुम मैं तो ध्वनि से दूर जा रही हूं, तो जमुना देवी वो पत्थर बन जाती। तो भगवान की बांसुरी के विषय में और उनकी बांसुरी के ध्वनि के विषय में क्या कुछ नहीं कहा गया। भगवान ने जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाई तो वृंदावन की सारी गोपियां मध्य रात्रि के समय अपने घरों को छोड़कर वो वन में आ गई रासलीला भगवान के साथ करने के लिए। तो एकमात्र कारण क्या था? बांसुरी की ध्वनि। और भगवान की बांसुरी ऐसी थी कि भगवान ने एक ही धुन उसमें से निकाली और वो एक धुन सभी गोपियों के कानों में जब गई तो सभी गोपियों को लगा कि भगवान मुझे अपने नाम से बुला रहे हैं। तो अब देखिए कई बार हम आजकल जो ये सेल फोन यूज करते हैं तो सेल फोन में एक साथ 10, 20, 50, 100, 1000 तक लोगों को SMS कर सकते हैं, है ना? तो कई बार आश्चर्य लगता होगा कि एक जगह पर किसी ने एक बटन दबाया है और हजार लोगों को वो एक SMS गया। टेक्नोलॉजी है कि एक बटन दबाया और हजार लोगों को अलग अलग SMS गया, थी भगवान की टेक्नोलॉजी 5000 वर्ष पहले, कि भगवान ने अपनी बांसुरी से एक धुन निकाली और सभी गोपियों को अलग अलग मैसेज मिला और सभी गोपियां उन्हें लगा कि भगवान व्यक्तिगत रूप से उन्हें बुला रहे हैं। तो सभी गोपियां मध्य रात्रि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण गई। तो अब इसमें यदि बांसुरी नहीं होती तो क्या भगवान रास लीला कर पाते? तो हमें धन्यवाद देना चाहिए किसे? बांसुरी को, जो कि भगवान के भक्त हैं, कि बांसुरी की वजह से हमें रास लीला भगवान श्री रास बिहारी इनके विषय में इनकी लीला श्रवण करने का अवसर मिला। यदि माता यशोदा नहीं हुआ होती तो क्या दामोदर लीला हुई होती? भगवान श्री दामोदर को बांधा किसने? यशोदा माई ने। यदि वो उखल नहीं हुआ होता तो क्या दामोदर लीला होती? यदि वो रस्सी, तो भगवान ने अपना गुणगान करवाया दामोदर इस लीला के द्वारा, परंतु भगवान निर्भर थे यशोदा माई, ओखल और उस रस्सी के ऊपर। अगर यदि दामोदर नहीं हुए होते तो क्या भगवान का गुणगान हुआ होता? श्री गिरिधर गोवर्धनधारी, तो हालांकि भगवान का तो गुणगान हम लोग करते हैं कि जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, परंतु गोवर्धन को हमें पहले धन्यवाद देना चाहिए। भागवत में तो इंद्रदेव को धन्यवाद दिया गया है कि यदि इंद्र वो संवर तक बाहरों को बुलाकर बाहर नहीं करवाते वृंदावन में तो गोवर्धन लीला नहीं हुई होती। और उससे पहले नंद महाराज, यदि नंद महाराज इंद्र यज्ञ उस दिन नहीं करते उसके आयोजन, तो पूरी गोवर्धन लीला नहीं होती। तो कोई भी लीला आप लो, भगवान के जो भक्त हैं वो सहायक रहे हैं भगवान के गुणगान हेतु। तो इसे भगवान स्वयं मानते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, परंतु मेरे भक्तों के संग में मैं जब रहता हूं तब से लोग मुझे पहचानते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां तक कहे थे कि हम कृष्ण को नहीं जानते। कौन है कृष्ण? हम राधा रानी के भक्त हैं, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संबंध श्रीमती राधा रानी से है, इसीलिए थोड़ा हम भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि कांटेक्ट है थोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना इन्फ्लुएंस लगाया है राधा रानी के थ्रू। आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, जैक। तो भगवान श्री कृष्ण के जैक हैं राधा रानी। तो आज श्री श्री राधा माधव इनका आविर्भाव दिवस। जानते हैं माधव भगवान का ये जो नाम है इसका अर्थ क्या है? जैसे भगवान का नाम मिला गोविंद, क्योंकि भगवान ग्रहों के और हमारे इंद्रियों को प्रसन्नता देने के लिए हर समय आतुर रहते हैं। भगवान का एक नाम है गोपीनाथ, गोपियों के वो नाथ हैं, दामोदर, रास बिहारी, वैसे ही माधव। माधव का अर्थ है जो लक्ष्मी देवी के पति हैं, वो हैं माधव, लक्ष्मी पति। अब देखिए माता लक्ष्मी, इन्हें तो सभी जानते हैं इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से भारत में लक्ष्मी देवी को सभी जानते हैं और कोई भूलना नहीं चाहता। मैं बंबई जा रहा था तो मैंने ट्रक के पीछे देखा, लिखा हुआ था लक्ष्मी धाम तुला कुंकू लाव तो धाम लक्ष्मी तुला कुंकू लाव। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा पंडित जवाहर की पत्नी का नाम होगा। मुझे लगा कि पंडित जवाहर अपनी पत्नी के बारे में पीछे क्यों लिखे। फिर मुझे किसी ने बताया कि वो उसका अर्थ दूसरा है, शायद लक्ष्मी जवाहर रुकेगी तब तक उसके घर में कुमकुम लगाते में जितना समय लगता है, कम से कम उतना समय तो लक्ष्मी रुकेगी, क्योंकि लक्ष्मी देवी का स्वभाव है कि वो चंचला है। और विशेष रूप से कलयुग में यदि कोई माता लक्ष्मी को कहे धाम लक्ष्मी तुला कुंकु लाओ तो लक्ष्मी देवी बोलते हैं लाऊ लाऊ। लक्ष्मी देवी इनके विषय में भागवत में कहा गया है कि माता लक्ष्मी एक नहीं, भगवान श्री कृष्ण सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं। वो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान कि वैकुंठ में सहस्त्र लक्ष्मियां हैं, एक नहीं और सहस्त्र लक्ष्मियां वो सेना में लगी हुई हैं भगवान श्री माधव के। अब देखिए कि लक्ष्मी देवी इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति किसी से सेवा करवा लेता है उसको लक्ष्मी देकर, कोई बड़ा बाप है तो उसके बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं और बहुत सारे नौकर चाकर किसी के पास हैं, अर्थात समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी बहुत है। क्योंकि लक्ष्मी बहुत है इसलिए इतने सारे नौकर चाकर हैं और यहां पर स्वयं लक्ष्मी सेवा में है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी ने अपना कुछ भाग किसी को देकर वहां पर नौकरी पर किसी को रखे हैं वैकुंठ धाम में, वहां पर कोई नौकर चाकर उन्होंने नहीं रखा, वहां की झाड़ू वो स्वयं लक्ष्मी देवी झाड़ू मारती हैं वैकुंठ में। तो बताया गया है कि वैकुंठ में सबसे पहले झाड़ू मारने की जरूरत है नहीं, वहां पर झाड़ू भी यदि कोई मारेगा तो यदि वैकुंठ की कोई रज है वैकुंठ के रज के एक कण से भौतिक संसार में लोगों का उद्धार हो रहा है तो उसकी झाड़ मारने की क्या जरूरत है। एक तो वहां पर गंदगी है ही नहीं, यदि वैकुंठ के रज को भी कोई नहीं तो उसे गंदगी नहीं कह सकते हम। जैसे कि ये उसी प्रकार से है जैसे मानो आपके जेब से 100-100 के नोट नीचे गिर गए, केवल कल्पना करना कि 100-100 की गड्डियों के नोट थे सब नीचे गिर गए और आप नौकर को बोलते थोड़ा झाड़ू मारो, झाड़ू मारो, वो तो दौड़ के आएगा झाड़ू मारने के लिए, बोला झाड़ू क्यों, मैं खुद अपने हाथों से मारता हूं। तो वैकुंठ धाम में हर एक धूलि का कण भी मूल्यवान है, इतना उसके अंदर कोई उसे गंदगी नहीं कह सकता। वहां पर तो सब कुछ चमचमाता हुआ है। तो लक्ष्मी देवी फिर वो वहां पर झाड़ू क्यों मार रही, क्योंकि वो भगवान श्री माधव की हर समय सेवा में लगे रहना चाहते हैं। हरे कृष्ण, ये जगाने का तरीका था क्या? तो हर समय भगवान की सेवा में लगा रहना चाहती है, इसलिए चाहे गंदगी हो या न हो वो सेवा में लगा रही थी। तो लक्ष्मी देवी अब हम विशेष रूप से कलयुग में तिरुपति बालाजी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। आप लोगों में से कितने लोग तिरुपति बालाजी गए हैं, हाथ उठाइए, शर्माइए मत, बहुत लोग गए हैं ना। और तिरुपति बालाजी का दर्शन लेने के कई लोग तिरुपति बालाजी को अपना फाइनेंसर मानते हैं कि हमारे बिजनेस का घर के फाइनेंस कंट्रोलर तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी जो कि सबसे ज्यादा उनकी जो पूजा सबसे बड़े ऐश्वर्य में होती है कि तिरुपति बालाजी का आविर्भाव हुआ लक्ष्मी देवी के कारण, कि जब भृगु मुनि उपेक्षा ले रहे थे तीनों गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जब उपेक्षा ले रहे थे तो विष्णु की छाती पर उन्होंने अपने लात मारी, तो लक्ष्मी देवी ने वो देखा और उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने ये अपराध अपनी आंखों से देखा है इसलिए मुझे इसके लिए तपस्या करनी होगी। तो लक्ष्मी देवी एक तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मैं कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगी, किसके, ब्राह्मणों के, इसलिए ब्राह्मण जो है वो कभी कुंकू नहीं लगा सकते। बचपन में भी क्योंकि कुंकू लगाने के लिए भी कुंकू खरीदना होगा ना, उतनी भी लक्ष्मी नहीं रहती उनके पास, होती तो यही कहा जाता, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण। कभी भी कोई कथा में आपने सुना नहीं होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिच ब्राह्मण। एक समय की बात है जब एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, तो लक्ष्मी देवी एक तो उन्होंने श्राप दिया और फिर वो इस भौतिक संसार में आई तपस्या करने हेतु, और कहां उन्होंने तपस्या की, कोल्हापुर में। तो बहुत लंबी कथा है कि फिर भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी देवी को ढूंढते हुए कि कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है अभी कि घर संभालने वाली ग्रहणी नहीं है, वैकुंठ संभालने वाली, तो फिर स्वयं भगवान विष्णु आए और फिर वो सारी लीला हुई और फिर उनका विवाह हुआ श्रीनिवास और लक्ष्मी इनका। तो लक्ष्मी देवी हालांकि भगवान श्री कृष्ण इनसे विवाह किए हैं, परंतु भगवान लक्ष्मी देवी को एक ऐसा स्थान दिया है कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि बहुत विरला कोई भक्त है जिसे ऐसा स्थान मिला है जो कि लक्ष्मी देवी को मिला है। लक्ष्मी देवी कोई जानता है कहां पर विराजमान है? भगवान के वक्षस्थल पर, भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी देवी विराजमान है। तो यदि किसी को लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करनी है तो कहां जाना होगा? भगवान श्री नारायण के पास, क्योंकि लक्ष्मी देवी का स्थान भगवान श्री नारायण में है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण या राधा माधव, जब तक हम इनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक, और लक्ष्मी देवी की असली कृपा क्या है, उनकी असली कृपा है वह जो भक्ति अपने भक्तों को देती है उनके स्वामी के प्रति। क्योंकि नित्य रूप से माता लक्ष्मी वो प्रभु श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा में है, इसलिए पाद सेवन में सर्वश्रेष्ठ है लक्ष्मी देवी, वो हर समय भगवान की पाद सेवा में लगी रहती। और इसी से हमें समझ में आता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के हर समय सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में इतनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि मेरे चरणों को हर समय माता लक्ष्मी उनकी सेवा करती रहती है। इसलिए कहा गया कि माता लक्ष्मी और तुलसी देवी में स्पर्धा रहती है, क्योंकि तुलसी देवी भी भगवान के चरणों पर है और माता लक्ष्मी वो भगवान के वक्षस्थल पर होने के साथ साथ भगवान की पाद सेवा में लगी है। तो दोनों में हो रहा है, क्या स्पर्धा है कि कौन किसकी सेवा, कौन भगवान की सेवा ज्यादा कर सकते हैं? तो भक्तों के बीच में इस प्रकार की स्पर्धा होती है कि कौन भगवान श्री कृष्ण की सेवा अधिक कर सके। इसलिए यदि हमें भी पता है कि हमारे भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, तो हमारे अंदर स्पर्धा होनी चाहिए। कैसे स्पर्धा? कि हम कितना भगवान की सेवा में लग रहे हैं। अक्सर भौतिक संसार में तो हमेशा کہ ہم دوسروں کو آگے کرتے ہیں، آپ کیجئے سیوا، ہم تو آپ کے داس ہیں، داسوں کا داسوں کا داس بتائے نا. تو حالانکہ ہم یہ واقع کہتے ہیں کہ ہم داسوں کے داسوں کے داس، پرنتو اس کے پیچھے چیتنا کیا ہے وہ دیکھ لینی چاہیے، پرکھ لینی چاہیے کہ کیا ہم سیوا سے بھاگ رہے ہیں یا بھگوان کی سیوا میں لگنے کے لیے زیادہ ہماری چیتنا ہے. اور ماتا لکشمی، تلسی دیوی، برندا دیوی، گوپیاں، منجریاں، گوپ سکھاگن، ہر کوئی جو بھگوان کے نتیہ پارشد ہیں، وہ بھگوان کا گنگان کرنے ہیتو ان کی سیوا میں لگے ہیں. جیسے کہ شریمد بھاگوت کے آٹھویں اسکند میں سمندر منتھن کی لیلا، تو راکشس اور دیوتاگر یہ اکترت ہوئے سمندر کا منتھن، کشیر ساگر کا منتھن کرنے کے لیے مندراچل پروت کو لایا گیا. اور یہ پوری کتھا ہم نے کئی بار پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی. تو کشیر ساگر کا جب منتھن ہو رہا تھا تو سب سے پہلے وہ ہرال وش باہر آیا اور بہت کچھ اس ہرال وش کے پشچات باہر آیا اس منتھن سے. انتت اس منتھن میں سے کون آئے؟ لکشمی دیوی. حالانکہ امرت لے کر دھنوانتری وہ آئے، پرنتو لکشمی دیوی آئی اور لکشمی دیوی جیسے ہی آئی تو لکشمی دیوی کے ہاتھ میں وار مالا تھی کہ وہ اپنے وار کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کون ہے اپیکت وار میرے لیے. تو ماتا لکشمی وار مالا لیے وہاں پر اپستھت، ایک تو راکشس گن تو خیر وہ تو ریجیکٹ ہو گئے، وہ تو لسٹ میں ہی نہیں تھے، میرج لسٹ میں ہی نہیں تھے وہ. پرنتو پھر باقی سارے جو دیوتا وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ماتا لکشمی ایک ایک دیوتا کے پاس جا رہی ہے ورمالا لے کر. اور ہر ایک دیوتا کو دیکھتے ہیں ماتا لکشمی، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کھوٹ ہے، یہ برہما جی کیا چار منہ والے، یہ شیو جی سر پرت لیا ہوا اور بھسم لگائے ہوئے نہیں. تو ان سب کو ماتا لکشمی نے ریجیکٹ کیا، سب میں کوئی نہ کوئی کھوٹ نکلی. اکثر بہت سنسار ہوتا ہوتا ہے نا، کئی بار ہم بھی اس موڑ میں جاتے ہیں کہ اس میں یہ کھوٹ ہے، اس میں وہ کھوٹ ہے، یہ کم اس کا بہت کم ہے، اس کا بہت زیادہ ہے، اور یہ تو سیم ہے وہ بھی نہیں. یہ اس کی پڑھائی لکھائی بہت اچھی ہے لیکن کھانا بنانا نہیں آتا، اور کھانا بنانا بہت اچھا آتا ہے لیکن پڑھنا ایک اکشر نہیں آتا. تو کئی بار ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ورمالا ہاتھ میں ہوتی ہے پرنتو سامنے کوئی ور نہیں دکھ رہا، وہ مالا بھارا ہو جاتی ہے اور پھر مالا پڑھنے لگتی ہے. تو لکشمی دیوی انہوں نے جب ان سب باقی دیوتاؤں میں کوئی نہ کوئی کھوٹ دیکھی، تو جب وہ بھگوان سری وشنو کے پاس آئی تو بھگوان سری وشنو کو دیکھا اور لکشمی دیوی نے پھر کہا کہ یہی ایک ویکتی ہیں جو हैं जिनके अंदर कोई खोट नहीं, जो कि निर्दोष, कोई दोष नहीं जिनके अंदर। परंतु लक्ष्मी देवी ने फिर भी एक दूसरी दृष्टिकोण से इनमें खोट निकाल ली, क्योंकि वो उस मूल में थी। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि हालांकि बाकियों से ये सबसे अच्छे हैं, परंतु एक खोट इनमें है कि ये बहुत कृपालु है, ये किसी के दोष को देखते नहीं और अपनी कृपा बरसा देते हैं। इस संदर्भ में हमारे आचार्य वो उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण का कि माता लक्ष्मी क्यों ऐसा बोल रही थी कि हालांकि इनमें और कोई दोष नहीं, परंतु एक दोष है कि ये बहुत ज्यादा कृपालु है। में माता लक्ष्मी याद कर रही थी पुत्रोद्धार की लीला को कि भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों का जो उद्धार किया वो आज तक बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि ये समझ नहीं पाए हैं कि कोई व्यक्ति के अंदर इतनी भी कृपा हो सकती है। ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख को लेकर, ब्रह्मा जी केवल बुद्धि से बने हुए हैं, जैसे हम लोग ये पंच महाभूत के बने हुए हैं, ब्रह्मा जी केवल बुद्धि के बने हुए हैं, और वो भी चार सर उनके, तो अपने चारों सर उनकी बुद्धि और सब कुछ जो तत्वों से बने हुए वो सब बुद्धि उन्होंने लगाई, परंतु ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए कि भगवान ने पुत्रों का उद्धार इस तरीके से कैसे किया। और हमने पुत्रों उद्धार की लीला बहुत बार सुनी है, परंतु हमें हर समय इसके ऊपर गौर देना चाहिए कि पुत्रों वो दोनों दृष्टिकोण से वो बहुत कपटी राक्षसी थी, अपने क्रियाओं से और अपनी आंतरिक चेतना से। कई बार हम देखते हैं कि हमारी क्रियाएं शुद्ध होती हैं परंतु आंतरिक चेतना दूषित होती है। जैसे हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो क्रिया शुद्ध है, भगवान की सेवा हो रही है, परंतु अंदर चेतना क्या है, अरे मुझे थोड़ा मसाला अच्छा लगता है डालो थोड़ा, तो उतना मसाला डाला और जो कुछ डाला वो चेतना में भगवान के लिए नहीं डाला है। कई बार हमारे चेतना में हम अपने आप को तसल्ली दे लेते, अरे भगवान को थोड़ी कुछ होने वाला है, थोड़ा सा मसाला ज्यादा चला गया या दो तीन पनीर और गया अंदर तो इनको थोड़ी कुछ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो क्रिया शुद्ध है, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, चेतना दूषित है। और कई बार हम देखते हैं कि क्रिया दूषित होगी परंतु चेतना शुद्ध होगी, जैसे अर्जुन वध कर रहे हैं रणभूमि में, ये क्रिया अशुद्ध है, किसी को मारना, तो हालांकि अर्जुन किसी को मार रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, परंतु चेतना शुद्ध है। जब माता पिता बच्चे को मारते हैं तो बच्चे बच्चे को क्या लगता है ये लोग मेरे माता पिता हैं, मारते हैं मुझे, परंतु उसके अंदर चेतना शुद्ध है माताओं की, माता पिताओं की। परंतु पोतना का उदाहरण यदि हम लें तो उसकी क्रिया और उसकी चेतना दोनों अशुद्ध, वो अपने क्रिया से मारने आई और वही चेतना अंदर भी थी उसकी। तो पुतला जो कि ऐसा दुर्जर विष लगाकर आई थी अपने स्तनों के ऊपर और भगवान केवल छह दिन के थे भगवान, तो पुतला उस चेतना में और वो भी विष लगाकर सुबह बाहर से विष लगाकर आई थी अपने स्तनों के ऊपर और अंदर से उसकी चेतना भी विषैली, तो विषैली चेतना अंदर से और स्तनों पर विष, ये थी पूतना। परंतु वो कौन सा वेश धारण कर आई थी, लक्ष्मी के रूप में आई थी वो। यहां पर हम लक्ष्मी की चर्चा कर रहे हैं, पुतना लक्ष्मी के रूप में आई थी। माता यशोदा और रोहिणी, इन्होंने जब पुतना को देखा तो इन्हें यही लगा कि साक्षात लक्ष्मी आई है। सभी गोपबाल सभी गोपगण उन्हें यही लगा कि साक्षात लक्ष्मी आई है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण हालांकि वो जान गए कि ये लक्ष्मी नहीं, ये तो एक खेचरी, एक राक्षसी पूतना कंस द्वारा भेजी गई है। कंसेन प्रहित घोड़ा, ये थी पूतना, भगवान जान गए थे। तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर मुद्दा हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ने पूतना को देखते ही पूतना का उद्धार करने के लिए ठान लिया। यह नहीं कि देखते ही भगवान ने ठान लिया कि आज तो इसका पोस्टमार्टम करना है, अब यदि कोई व्यक्ति को हम जानते हैं कि जो हमारा शत्रु है और वो आ रहा है हमसे मिलने के लिए, तो यदि हमें किसी ने बता दिया कि वो जो तुम्हारा शत्रु तुमसे मिलने आ रहा है इसके बगल में छुरी है तुम्हें मारने के लिए, या बंदूक है और वो हमारे सामने आ रहा है हाथ जोड़े हुए और हमें हरे कृष्णा बोल रहा है और हम जानते हैं कि वो छुरी नहीं आया है घोपने के लिए, तो हमारी दृष्टि कैसी होगी, कैसी होगी हमारी दृष्टि उसके प्रति। तो यहां पर भगवान छह दिन के जब नंद भवन में सोए हुए तो भगवान की जो ज्ञान शक्ति, भगवान की ज्ञान शक्ति ने भगवान को बता दिया याद है तुम्हें मारने के लिए भगवान। तो सोचिए भगवान की ज्ञान शक्ति ने ये ज्ञान भगवान को दे दिया कि ये पूतना है और ये केवल लक्ष्मी का वेश धारण किए हैं मारने आई है। परंतु भगवान ने देखा कि कम से कम ये भक्त के कपड़े तो पहनकर आई, कम से कम ये भक्त के रूप में तो आई है। तो आचार्य बोलते हैं कि यदि कोई भक्त के वेश में भी भगवान के पास जाता है तो भगवान उद्धार कर देते, इसलिए ये अंगूठी माला तिलक ये धोती कुर्ता ये सब पहनना क्यों इसका नियम बताया गया है कि यदि हमारे मन में पोतना जैसे कुविचार भी क्यों ना हो केवल हम भक्त की पोशाक पहनकर भक्त के भगवान के सामने जाए तो भगवान उद्धार कर देते हैं तो भगवान ने हालांकि ज्ञान शक्ति से सुन लिया कि वो अंदर उसकी चेतना क्या है परंतु भगवान ने ज्ञान शक्ति को कहा परंतु ये बाहर से तो भक्त का पहनावा लेकर आई है इसलिए प्रभुपाद ने कहा है इवन इफ यू ड्रेस अप लाइक अ डिवोटी कृष्णा विल लिबरेट यू बिकॉज पोतना सिंपली ड्रेस्ड अप लाइक अ डिवोटी तो भगवान ने अब देखा कि ज्ञान शक्ति मुझे ये ज्ञान दे रही है कि ये पोतना किस विष को लेकर आई है अंदर से और बाहर से दोनों तो भगवान की क्रिया शक्ति आ गई भगवान की क्रिया शक्ति अब भगवान को कही कि अब आप मुझे अनुमति दे ये पोतना को खत्म करने के लिए तो भगवान ने अपनी क्रिया शक्ति को कहा कि तुम अपने शक्ति से मेरे दोनों हाथों में ये शक्ति देना कि मैं पोतना के शरीर को अपने दोनों हाथों से पकड़ूं तो जब पोतना स्तनपान कराना शुरू की कृष्ण को तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाहिना और बाएं हाथ दोनों हाथों से पोतना के स्तनों को पकड़ा गाढ़्याम कराभ्याम प्रपीड्य कहा गया है कि अपने दोनों हाथों से भगवान ने पोतना के स्तनों को पकड़ा तो आचार्य बताते हैं कि भगवान ने अपना दाहिना हाथ पकड़ा इसलिए कि भगवान ये दिखा रहे थे कि पोतना के जितने भी पिछले कर्म वो मैंने इस हाथ से पकड़ लिए पोतना के जितने भी बुरे कर्म वो मैंने अपने दाएं हाथ से पकड़ लिए हैं और वो तो पकड़ लिए परंतु उनके जो परिणाम हैं जो भविष्य में आने वाले हैं भगवान ने अपने बाएं हाथ से उनको पकड़ लिए तो पिछले कर्म और उन पिछले कर्मों के परिणाम दोनों हाथों से भगवान ने पकड़ लिए और अभी का जो वर्तमान कर्म वो कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए भगवान ने अपने होंठ लगा दिए तो सोचिए भगवान अपना सर्वस्व लगा रहे हैं पोतना का उद्धार करने के लिए पोतना अपना सर्वस्व लगा रहे हैं भगवान को मारने के लिए तो भगवान ने भी सोचा कि यदि पोतना अपना सब कुछ न्याछावर कर रही है मुझे मारने के लिए तो मैं भी अपना सब कुछ न्याछावर कर दूंगा इस पोतना का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इसलिए उसके पिछले कर्म उन कर्मों का परिणाम जो आगे आने वाला है और वर्तमान कर्म तीनों को भगवान ने अपने दोनों हाथ और होंठों से पकड़ लिया तो मानो अब पोतना के पास और कुछ बाकी ही नहीं रह गया कि वो अपना कपट भगवान के ऊपर कैसे उतारे सारे रास्ते ब्लॉक भगवान ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए पूतना के तो भगवान ने पूतना का विष पिया दूध पिया, उसके पिछले कर्म को पी लिया, उसके आगे आने वाले कर्मों के परिणाम को पी लिया, उसके वर्तमान कर्मों को पी लिया, और इतना ही नहीं केवल भगवान ने सब कुछ पी ही नहीं लिया, भगवान ने फिर अपने सानिध्य की वजह से पूतना के अंदर दिव्य प्रेमा भक्ति डाल दी। ऐसा नहीं कि पूतना को रिक्त कर दिया सब चीजों से, पूतना के अंदर दिव्य प्रेमा भक्ति डाल दी, और तभी पूतना सक्षम हुई गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की सेविका बनी, वो भगवान श्री कृष्ण की माता का पद मिला। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब दशम स्कंद में वो बाकी सभी राक्षसों के वध की लीला सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, तो बहुत संक्षिप्त रूप में सुनाते हैं, परंतु केवल एक ही लीला है जिसे बहुत विस्तार से सुनाया, और वह है पूतना वध। क्योंकि स्वयं सुखदेव गोस्वामी का हृदय परिवर्तित हुआ था जब उन्होंने पूतना वध की लीला सुनी थी। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही पैदा हुए थे वो वन की तरफ निकल पड़े, ब्रह्मवादी थे वो, और व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा ताकि वो भागवत के श्लोक उच्चारण करते हुए सुखदेव गोस्वामी को भागवत के प्रति आकर्षित कर सके। तो सबसे पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुना, बढ़ा पीड़म वपुर नटवर, यह वाला श्लोक भागवत का सुना, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हुआ है कि जो मौन मुकुट धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और इतना ऐश्वर्य इनके ऊपर है, इनकी सुंदरता को बढ़ाते हुए। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब यह श्लोक सुना, बढ़ा पीड़म, तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि ये इतने ऐश्वर्यशाली भगवान क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मैं निर्वस्त्र, मैंने एक धागा तक नहीं पहना हुआ है अपने शरीर के ऊपर, और ये इनका, ये भगवान श्री कृष्ण का गुणगान ऐसे हो रहा है, तो क्या ये मेरा उद्धार करेंगे। इसी श्लोक के तुरंत पश्चात फिर इन्होंने ये श्लोक गाया, अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिघाम शयापायेदप्य सागरी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे सुखदेव स्वामी, आपका क्या कहना, यहां पर तो यह उतारू है पूतना जैसे राक्षसी का उद्धार करने के, तो फिर क्या आपको अपनी कृपा नहीं देंगे। तो जब सुखदेव स्वामी ने यह श्लोक सुना पूतना उद्धार का, तब सुखदेव गोस्वामी वो जान गए कि यही एकमात्र भगवान है जिन्हें मुझे शरणागत होना है, क्योंकि इनसे दयालु और कौन हो सकता है कि जो अपने दोनों हाथ और अपने होठों को लगाए हैं पूतना के सभी प्रकार के कर्मों से उसे मुक्ति दिलाने के लिए। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम गए, तो भगवान श्री कृष्ण माते कहकर जब उन्होंने पुकारा, तो तीन माताएं आ गई, देवकी, माता यशोदा और पूतना। तो सोचिए कि ये भगवान, उन्होंने पूतना का उद्धार इसलिए किया क्योंकि पूतना लक्ष्मी के रूप में आई, केवल बाहरी रूप से, केवल वस्त्र पहनकर आई थी वो लक्ष्मी के, भजन में हम गाते हैं,
तुम्हें परम दयाल प्रभु परम दयाल, परम दयाल प्रभु परम दयाल।
इनसे दयालु और कोई भगवान नहीं है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का, भगवान के दो नाम कहे गए हैं, एक है निमिष और अनिमिष। तो निमिष का अर्थ है जब कोई व्यक्ति आंखें बंद करता है उसे कहते हैं निमिष, और अनिमिष कहते हैं जब आंखें खुली रहें, आंखें कभी बंद न हो। तो भगवान श्री कृष्ण को निमिष और अनिमिष ये दोनों कहा गया है। क्यों? क्योंकि एक साथ कोई व्यक्ति ये दोनों कैसे कर सकता है? कर सकता है कभी कभी ना। तो या तो आपको बंद होगी या आपकी खुली रहेगी, ये दोनों एक साथ कैसे? तो भगवान को दोनों कहा गया है, अनिमिष और निमिष। यह इसलिए कि जब भगवान देखते हैं कि कोई उनका भक्त उनके शरणागत हुए आया है, परंतु उसके अंदर दोष है, उसके अंदर उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, उसके पाप हैं पिछले, तो भगवान जब इन सब दोषों को पापों को देखते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि इस भक्त में अपने सारे भौतिक इच्छाओं के साथ और पापों के साथ मैंने एक बार थोड़ा सा नाम ले लिया, तो थोड़ी सी भक्ति जब कोई पापी व्यक्ति भी कर देता है भगवान की, तो भगवान को बिना आंखें बंद किए अनिमिष, बिना पलकों को बंद किए उसे गौर से नोट करते हैं। उसकी थोड़ी सी भक्ति को भगवान तुरंत नोट डाउन कर लेते हैं। इसलिए कम दयालुम शरणम व्रजेम, इनसे दयालु और कौन हो सकता है? तो भगवान पुतना का उद्धार किए, इसमें भगवान से ज्यादा भक्तों में बहुमान हुआ है। अब देखिए यह एक कथा है जिसके अंदर माता यशोदा, रोहिणी या अन्य जो गोपगण, उन्होंने भगवान को कोई सहायता नहीं किया पूतना को मारने में, अकेले भगवान ने मारा। कि इसमें भी भगवान वो पूतना को नहीं मारते थे या बड़ा करते थे यदि पूतना राक्षसी के रूप में आती, क्योंकि वो एक भक्त के रूप में आई तो इसलिए भक्त का बहुमान हुआ है। कि भगवान ने देखा कि कम से कम ये भक्त के रूप में तो बाहर से आई है, इसलिए भगवान ने उद्धार किया पुतना का। एक बहुत ही सुंदर कथा है श्री वैष्णव आचार्यों के संदर्भ में, जिसमें हम देख सकते हैं कि जब भक्त और भगवान में स्पर्धा होती है तो कौन जीतता है। एक बहुत महान भक्त हुए श्री वैष्णव संप्रदाय के, जो कि एक अवर थे, जैसे कि हम महाजन या आचार्य भक्तों को कहें तो श्री संप्रदाय में बड़े बड़े महाजनों को अवर कहा गया था। तो एक बार एक घटना ऐसी हुई कि दक्षिण भारत में दो तीन अलवर ये यात्रा के लिए निकले थे श्रीरंगम जाने के लिए। बादल जा रहे थे और बहुत वर्षा हो रही थी, तो तूफान वर्षा तो अपने आप को वर्षा से बचाने के लिए, ताकि तबीयत ठीक रहे इनकी, तो वर्षा से बचाने के लिए ये इन्होंने एक दुकान से देखी तो उसका छज्जा सा था, तो उसके नीचे अपने आप को वर्षा से बचाए ताकि, तो भागे और वहां पर उन्होंने उस छज्जे के नीचे शरण ग्रहण की। तो वहां पर वो खड़े थे, प्रतीक्षा में थे कि वर्षा कब बंद होती है। तो दुकान थी किसी की, तो दुकान वाला जो था वो इनको देखा कि ये वैष्णव पहनावे में, वैष्णव तिलक और वैष्णव पोशाक इनकी। तो दुकानदार पीछे भी कहता है, साधु महात्मा थोड़ा पीछे देखो आप कहां खड़े हो। तो वहां एक कसाई था, एक मुसलमान कसाई, जो कि वो कसाई घर था वो, जहां पर वो गौ हत्या किया करता था। और ये वहां पर खड़े हुए जहां पर गौ हत्या हो रही थी। तो तुरंत ये सोचे कि अरे ऐसे ऐसी पापी जगह पर हम क्यों खड़े हैं। तो उनमें से एक जो अलवर थे उन्होंने उस कसाई घर के अंदर देखा, तो ये कसाई मुसलमान कसाई ये गोमांस बेच रहा था। तो उसका तराजू था, तो एक तरफ उसने गोमांस रखा हुआ था और दूसरी तरफ जो वजन करने के लिए रखते हैं वजन, तो वजन उसने एक शालिग्राम रखा हुआ था। नरसिंह शालिग्राम, वो भी गोमांस का वजन करने के लिए नरसिंह शालिग्राम। और जब इन अलवर ने देखा इन्हें ऐसा लगा कि धरती फट कर ये अंदर क्यों नहीं गिर गए। तो इसने जाकर कहा, तुम जानते हो तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। तुमने कहा क्या हुआ? लेकिन ये जो तुम वजन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, ये साक्षात भगवान शालिग्राम। तो इसने कहा, कौन? भगवान? ये तो पत्थर है। ने कहा कि किसने दिया तुम्हें? तुम्हारी तरह कोई ब्राह्मण था जो कुछ पैसा चाहता था, तो उसके पास कुछ धन नहीं था, तो उसने लाकर मुझे ये दे दिया मुझसे पैसे लेने के लिए। तो तुम्हारी तरह किसी ब्राह्मण ने लाकर दिया? अलवर ने कहा कि मैं कृपया करके गिड़गिड़ाता हूं कि मुझे वो दे दो। क्या करोगे इसका? मैं जो कुछ करूं मुझे दे दो ये। तो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो मुसलमान ने देखा कि ये इतना रो रहा है, इसके लिए पत्थर के लिए, तो दे दिया, ले लो ले जाओ। तुरंत वो अलवर उसे शालिग्राम को लेकर वो अपने घर गए और वो रोते जागते हुए उनका अभिषेक किया। पूरे दिन भर उनका अभिषेक किया, क्योंकि इतने समय तक वो एक कसाई खाने में और वो भी एक तरफ गोमांस और दूसरी तरफ इनको, तो पूरे दिन भर अभिषेक किया उनको अलग अलग पदार्थों से, शुद्ध पदार्थों से। नरसिंह भगवान उनके सपने में आए और भगवान नरसिंह ने कहा कि फिर से मुझे उसका पैर खाने में जाकर रखो। उन्होंने कहा क्यों भगवान? क्योंकि तुम्हारी तरह एक ब्राह्मण ने मुझे बेचा था वहां पर, क्योंकि वो आदतों में गिर गया था इसलिए उसे पैसे चाहिए थे और वो इतना अधम हो चुका था कि उसने मुझे उस मुसलमान कसाई को बेच दिया। तो भगवान नरसिंह देव इतना क्रोधित थे ब्राह्मणों के ऊपर कि मुझे किसी ब्राह्मण के घर नहीं रहना, मुझे वो कसाई खाने में रहना मंजूर है, कम से कम वो मुझे बेच तो नहीं रहा। तो नलवर ने कहा आप चाहे कुछ भी कहो, आपको मैं फिर से उस कसाई खाने में नहीं जाने दूंगा। तो भगवान नरसिंह देव ने कहा तो फिर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं, सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तो तुम्हें मान्य है? तो नलवर ने कहा हां, चाहे आप मेरा सब कुछ बर्बाद कर दो। तो फिर दूसरे ही दिन उसके परिवार के सारे सदस्य बीमार हुए और उसके कुछ बच्चे थे, एक एक बच्चा एक एक महीने में मरने लगा। नरसिंह भगवान एक महीने बाद आए तो अभी भी तुम मुझे रखना चाहोगे? तो अलवर कहते हैं कि हां, चाहे भगवान आप मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मार दो, फिर से मैं वो दृश्य नहीं देख सकता जो मैंने देखा आप और उसका सही खाने में। दूसरे महीने में दूसरा पुत्र मर गया, चार महीने में चार पुत्र मर गए और नरसिंह भगवान हर बार आकर बोल रहे थे क्या अब भी मुझे रखना चाहोगे? हां, पत्नी मर गई, पिता, माता, घर जलकर भस्म हो गया, जो खेती थी वो भूकंप में सारी खेती विध्वंस हो गई और नरसिंह देव आकर बार बार पूछ रहे थे क्या अब भी तुम मुझे रखना चाहोगे? इससे भी सीखे नहीं? और लोर ने कहा नहीं, मैं फिर से नहीं दूंगा वहां पर। अब अंत में केवल वो स्वयं बच गए तो उन्हें पीलिया का रोग, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस सब एक साथ, इतनी सारी बीमारियां एक साथ। और जो उनकी उम्र थी उसके 50 साल आगे जो उनका शरीर होता वैसा उनका शरीर हो गया, जीर्ण और मृत्यु शैया पर वो लेटे हुए। और सभी जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है इनके, सभी आके बोले कि अरे दे दो फिर से हो शालिग्राम उस कसाई को, अब तुम भी मारने वाले हो, ऐसे भगवान की आराधना करके क्या फायदा कि जो इतनी पीड़ा दे रहे हैं अपने भक्त को। इन्होंने कहा नहीं, चाहे मुझे वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनका गला पूरा बीमारी और कीटाणुओं से भरा हुआ, लेकिन नहीं। और अंततः उनकी जो अंतिम श्वास उन्होंने ली, उन्होंने कहा कि वो शालिग्राम मेरे छाती पर रखो। इन्हीं के वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। तो शालिग्राम को अपनी छाती पर रखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए नरसिंह भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने नरसिंह भगवान को इस स्थिति में किसी ने आज तक देखा नहीं था। नरसिंह भगवान को या तो शांत रूप में या उग्र रूप में, इन दो रूपों में देखा था सभी ने। परंतु ये नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो इनकी आंखों से क्रोध नहीं केवल आंसू बह रहे थे, नदियां बह रही थी आंसुओं की। सोचिए नरसिंह भगवान रोते हुए, नरसिंह भगवान रोते हुए क्षमा मांग रहे थे इनसे, इन्हें पुनर्जीवित किया और क्षमा मांगकर नरसिंह भगवान ने कहा मैं हार गया तुम्हारे सामने, मैंने सोचा कि मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर हावी होकर तुम्हें हरा देगा। जो मुझे ब्राह्मणों के ऊपर क्रोध आया था उस एक ब्राह्मण के वजह से, तो मुझे लगा कि मेरा क्रोध जो है वो तुम्हें हरा देगा। तब तुम्हारा दृढ़ निश्चय और तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति वो इतनी गहरी थी कि तुम्हारे दृढ़ निश्चय और तुम्हारी भक्ति ने मुझ जैसे क्रोधी अवतार को भी पिघला दिया। यदि भगवान विष्णु के हरेक अवतार को आप देखो तो सबसे ज्यादा क्रोध जिस अवतार में दिखाया हुआ है नरसिंह भगवान, कितना क्रोध नरसिंह भगवान ने दिखाया था कि कोई नरसिंह भगवान के सामने भी नहीं जा पा रहा, केवल प्रह्लाद महाराज। तो नरसिंह भगवान प्रह्लाद महाराज से पूछते हैं कि प्रह्लाद तुम डर नहीं रहे मुझसे? सभी डर रहे हैं, ब्रह्मा शिव जी यहां तक कि लक्ष्मी देवी डर रही हैं, प्रह्लाद तुम्हें डर नहीं लग रहा? अब जानना चाहेंगे प्रह्लाद महाराज का उत्तर क्या था। प्रह्लाद महाराज ने नरसिंह देव से कहा भगवान मैं केवल एक ही वस्तु से डरता हूं, और वो कहते हैं मैं डरता हूं मेरी स्वयं की भौतिक इच्छाओं से, इसके अलावा मुझे और किसी से डर नहीं, मैं केवल अपने स्वयं की भौतिक इच्छाओं से डरता हूं। इसलिए हे भगवान आपको यदि मेरी रक्षा करनी है तो मुझे उस डर से बाहर निकलाओ, मेरी भौतिक इच्छाओं से मुझे बचाओ। तो प्रह्लाद महाराज जैसे शुद्ध महाजन यदि वो अपने स्वयं की भौतिक इच्छाओं से डर रहे हैं, हालांकि है ही नहीं उनके अंदर, अगर उनके अंदर भौतिक इच्छाएं होती तो नरसिंह भगवान प्रकट नहीं हो। प्रह्लाद महाराज हमें क्या सिखा रहे हैं कि भौतिक संसार में और कोई वस्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो डर रहे हैं कौन कौन सी चीजों से, कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मेरा परिवार चलेगा कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं, मेरा शरीर कब तक चलेगा, हमारा भय क्या है, किससे हम डरे हुए हैं, इन सब तुच्छ चीजों से, भौतिक संसार के, हमारे शरीर से, पैसों से, जो जो सुरक्षाएं हमने हमारे इंद्रिय भोग के लिए इकट्ठा की हैं हम उससे डरे हुए हैं कहीं वो छिन न जाए। इच्छाओं से डरना चाहिए और उसके अलावा इस भौतिक संसार में लोग सभी से डरे हुए हैं। अपनी भौतिक इच्छाओं से कोई डरा हुआ नहीं है, बल्कि कि वो कह रहा है कि मेरी भौतिक इच्छाएं मेरी रक्षा करेंगी। परंतु यहां प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि वो भगवान आपका ये जो रूप है जिससे सभी डरे हुए हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं, मेरी भौतिक इच्छाओं से आप मुझे बचाइए। इसलिए अक्सर मैं भी प्रयास करता हूं कि जब भी भगवान के सामने जाऊं तो यही एक प्रार्थना कि कृष्ण प्रेम, भगवत धाम, वैकुंठवास, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। भगवान, हाथ जोड़कर मैं आपके सामने यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे मेरी भौतिक इच्छाओं से बचाओ, मुझे अपने आप से बचाओ, क्योंकि हम सब का शत्रु और वो नहीं, न हमारा कोई परिवार होगा, न कोई ऑफिस का बॉस, न कोई दूसरा देश। हम सब का शत्रु कौन है? हम स्वयं, हम स्वयं हैं अपने आप के शत्रु, क्योंकि हम स्वयं अपनी भौतिक इच्छाओं के वजह से इस भौतिक संसार में फिर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है हमारे इस भौतिक संसार में रहने का हमारे अलावा, हम स्वयं हैं। तो मुझे हमें देखना है कि हमें इस भौतिक संसार में कौन पैदा हुआ है, के सामने खड़े हो जाओ कि जन्म मृत्यु जमा आदि ये सारे दुख और इनके अलावा आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैनिक इन सभी दुखों के क्लेश जो हैं ये मेरे ऊपर आ रहे हैं, किसके कारण? मेरे कारण। इसलिए भक्तिवत ठाकुर अपने एक सुंदर भजन में गाते हैं, निज कर्म दोषे होए भजने र बाधा, कि हे भगवान आपके भजन में बाधा हो रही है, क्योंकि मेरे स्वयं के जो निज कर्म हैं, हमारे स्वयं के जो निज दोष निज कर्म जो हैं, उनके वजह से हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। हम ये समस्या लेकर आते हैं कि जप करने के लिए समय नहीं मिल रहा, या जप में नींद आती है, या रुचि नहीं आ रही जप में, या शारीरिक तकलीफ है, ये सब का कारण क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं निज कर्म दोषे। एक उदाहरण दिया हुआ है, जब हम खाते हैं और वे दांत यदि गलती से अपने जीभ को चबा दे, कई बार होता है खाते समय ये जीभ को एक दांत दबा देते हैं, तो किसे दोष देंगे? जिसने वो भोजन पकाया है उसे लेकर डांटेंगे कि क्यों ऐसा भोजन बनाया, क्यों चावल बनाया। अरे यदि भगवान चावल नहीं बनाते तो आगे चावल पकता नहीं, और यदि चावल पकता नहीं तो आज मेरी जीभ कटती नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारे ही दांतों की वजह से अपने जीवन को हम काटते हैं, परंतु दोष दे रहे चावल के ऊपर, दोष दे रहे हैं जिसने पकाया है चावल, दोष दे रहे हैं जिसने चावल उगाया है, दोष दे रहे हैं उन भगवान को जिन्होंने प्रकृति बनाई, या दोष दे रहे हैं उन भगवान को जिन्होंने दांत बनाया कि जिन्होंने जवाब बनाए। किसे दोष देंगे? हम दाता को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वही दांत तो बाकी दिन हमारे इंद्रिय भोग में सहायक हैं। क्या जिह्वा को दोष देंगे? अरे इसी जिह्वा से तो इतना सब कुछ आस्वादन कर रहे हैं, इसी जिह्वा से तो इतना बर्बर करते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं अपने आप को दोष दे रहा हूं। प्रहलाद महाराज यही बोल रहे हैं कि आपसे मुझे कोई डर नहीं। नरसिंह भगवान के संदर्भ कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि आपके सामने नरसिंह भगवान आ जाए रात को, तो क्या हिम्मत होगी? नरसिंह आपके जाने की भी हिम्मत होगी? उसमें भी हम डरेंगे कि अगर एक लाइन में भूल गए। उनके नाखूनों ने जो हिरण्यकशिपु के साथ किया, ये जो उन्होंने भूल गया, तो नरसिंह को याद दिलाएंगे ये लाइन भूल जाते हैं। परंतु देखिए, और विशेष रूप से वो श्री वैष्णव आयोर की कथा, सब कुछ छीन लिया जिन्होंने, और शालग्राम ये भगवान का ऐसा रूप है कि यदि शालग्राम को कोई कर्ता अपने कर्ता खाने में गोमांस के सामने भी वहीं पर भी रख दे, तो शालग्राम दूषित नहीं हो सकते। तो शास्त्रों के आधार पर वो अलवर कह सकते थे, अरे भाई आप तो अनुमत हो, आपको कौन दूषित कर सकता है, ठीक है ले जाओ, कौन करता है दूषित कर सकता है उनको। परंतु इनका दृढ़ निश्चय कि नहीं, फिर से उस कसाई के कसाई खाने में आप नहीं जा सकते। तो इस स्पर्धा में विजय भगवान के भक्त हुए, सब कुछ हर लिया गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए जिगर चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए साहस चाहिए। वो कई बार लोग डायलॉग बोलते हैं ना, जिसने अपनी मां का दूध पिया है और सामने और इनकी भक्ति कर बताओ। खैर आजकल तो लोग केवल पैकेट का दूध पीते हैं, मां का भी दूध पीने जाए तो पता नहीं वहां से चाय निकलेगी, क्योंकि आजकल दूध के बजाय चाय का जमाना है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो अपना सर्वस्व, हालांकि वो परम कृपालु हैं, भगवान नरसिंह देव की कथा हमने जो सुनी, इसमें उन्होंने इस हद तक परखा अपने इस भक्त को, क्यों? अपना गुणगान करने हेतु नहीं, इनका गुणगान करने हेतु। इसलिए भगवान शिष्य राधा माधव, इनका गुणगान छिपा है माता लक्ष्मी के गुणगान में। तो आज के दिन हम इनके चरण कमलों में यही अपनी प्रार्थना रखेंगे कि जैसे माता लक्ष्मी ने किसी और को स्वीकार नहीं किया, केवल भगवान को, जैसे उस अहोर ने जितने भी सारे दुख आए कभी छोड़ा नहीं, शंका तक नहीं की, इतने दुख जो आए कभी शंका तक नहीं की कि क्या मैं सही भगवान की आराधना कर रहा हूं। थोड़ा सा बुखार चढ़ जाता है, शारीरिक थोड़ी सी तकलीफ आती है तो तुरंत भगवान को छोड़कर हम भागते हैं डॉक्टर के पास, यह हमारी स्थिति है। परंतु इनके अंदर कण मात्र भी भगवान के प्रति जो दृढ़ विश्वास था वो कम नहीं हुआ। तो हमारी प्रार्थना आज यही होनी चाहिए कि हम भी हमारी वरमाला लेकर खड़े हैं और हमें एक चयन करने का मौका दिया गया है कि क्या हमें भगवान श्री कृष्ण चाहिए या इनके अलावा अन्य देवी देवता, या आजकल तो इस भौतिक संसार के लोगों के पीछे लोग पड़े। तो हमें हम उस घाट पर खड़े हुए हैं जहां पर एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है और एक तरफ सारी दुनिया, और हमें चुनाव करना है कि हमें ये दुनिया चाहिए या शिष्य राधा माधव, कौन चाहिए। तो यदि आज आपने इनके सामने बोल दिया है कि आपको ये दुनिया नहीं बल्कि ये दुनिया को बनाने वाला चाहिए, वो भगवान चाहिए, तो आज इनका बर्थडे है और बर्थडे के दिन इन्होंने आपके मुख से गिफ्ट ले लिया। ये आज आपका बर्थडे गिफ्ट समझ कर दिया है ना। परंतु भगवान के आविर्भाव दिवस के दिन, किसी और के आविर्भाव दिवस के दिन हम कुछ बर्थडे गिफ्ट पैक कर देते हैं, है ना, कोई खिलौना या लिफाफा पैक कर देते हैं। परंतु भगवान के आविर्भाव दिवस के दिन हमें अपने आप को पैक कर देना है, और इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम सभी धर्मों को त्याग कर वो त्यागे हुए धर्म मुझे मत दो, तुम मुझे तुम चाहिए। इसलिए अर्जुन ने अपने आप को दिया भगवान को। तो यदि हमें शिष्य राधा माधव जैसे बहुमूल्य रत्न चाहिए हमारे जीवन में, तो हमें इसकी रकम चुकानी होगी, और इसकी रकम क्या है, इस भौतिक संसार की और कोई इच्छा न होना, केवल एकमात्र इच्छा इन भगवान को प्राप्त करने की। और इसलिए इनको प्रसन्नता मिलती है, जैसे कि आज हम सब की तरफ देखते हुए शिष्य राधा माधव मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि बाकी देवी देवताओं के तुलना में बाकी देवी देवता इतने मुस्कुराते दिखते नहीं, है ना, कभी देखा है शिव जी इतना मुस्कुरा रहे हैं, दुर्गा देवी इतना मुस्कुरा रही हैं, तो कई बार लगता है कि बहुत सरल होगा, जब कोई मुस्कुराता है तो उनसे बात करना बहुत आसान होता है ना, अगर गुस्से में खड़ा है उसके थोड़ा दूर ही रहते हैं, थोड़ा बाद में जाएंगे, थोड़ा गुस्से में दिख रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, पहले मुस्कुराते हैं, तो इसलिए फिर सभी दौड़े दौड़े आते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे ही पास में आते हैं तब फिर हमारी जो मुस्कुराहट है वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में लगी है, उसे छीन लेते हैं। इसलिए हमें असली तरीके से मुस्कुराहट देने के लिए पहले रुलाते हैं, पहले रुलाते हैं, क्योंकि पहले रुलाते हैं फिर जब वो हंसाएंगे तो उसमें ज्यादा आनंद है। जैसे कि हरे कृष्ण प्रवचन में हम प्रसाद कब देते हैं, पहले लेक्चर सुनाकर, तो लेक्चर जब सुनाते हैं तो उसमें भूख ज्यादा लगती है और फिर प्रसाद खाने में ज्यादा आनंद आता है। तो ये इनका भी नियम ऐसा ही है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना आज इनके चरण कमलों में होने चाहिए कि जैसे इनका नाम है शिष्य राधा माधव, जो कि लक्ष्मी देवी और आदि लक्ष्मी, विशेष रूप से आदि लक्ष्मी शिष्य श्रीमती राधा रानी के ये प्राणेश्वर हैं, तो यही प्रार्थना इनके समक्ष होनी चाहिए कि जैसे लक्ष्मी देवी ने और किसी का चुनाव नहीं किया, केवल एक ही, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, वैसे ही हम भी हमारे जीवन में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करें और अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 बोलो शिष्य राधा माधव भगवान की, शिष्य गौरवित्र की, श्री पंच तत्व भगवान की। विशेष रूप से हम
सलत्री परिवार का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम भगवान की भक्ति में लग सके। हालांकि हर दिन तो ये राधा माधव की सेवा में लगे रहे, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अवसर रोज ताकि रोज हम शिष्य राधा माधव की सेवा में स्वीकार से रहे, तो कम से कम साल में एक बार तो हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। और शिष्य राधा महाराज जी से मालूम है कि अपने धाम को छोड़कर नीचे आए हैं हमारे पास, और आप लोगों में से कई लोग आने से पहले आ चुके थे भगवान यहाँ, सबके आने से पहले वो आ गए, तो इनकी कृपा इतनी है, तो कम से कम हमें अपनी तरफ से इतना तो करना चाहिए, इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले, परंतु हम ये नहीं कहेंगे प्राण तन से निकलने से पहले भगवान का नाम हम लेते रहे। और ये संभव हुआ है कि हम आज इस प्रकार का सुंदर उत्सव मना पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो यदि श्रील प्रभुपाद ने हमें इन शिष्य राधा माधव से परिचित नहीं कराया होता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। शिल प्रभुपाद की बहुत